نحمده ونصلي على رسوله الكريم أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم رب اشرح لي صدري ويسر لي أمري واحلل عقدة من لساني يفقه قولي. نماز نبی کا اگلا چپٹر جس سے ہم آج انشاءاللہ کچھ عمل کی باتیں جو ہم نے اس سے سیکھی اس کو دیکھیں گے وہ ہے نماز کی سنتوں کا بیان. سنت نمازوں کا کیا حکم ہے اور نماز میں سنتوں کی کیا جگہ ہے اس بارے میں بھی کچھ افراد اور تفریق جو ہے وہ ہمارے پایا جاتا ہے. پہلی چیز جو ہم نے اس حصے سے سیکھی کہ فرض نمازوں کے علاوہ 12 رکعتیں جس نے پڑھی اس کے لیے جنت میں ایک گھر بنایا جاتا ہے. کون سی ہیں وہ رکعتیں؟ ظہر کی نماز سے پہلے 4 رکعتیں، 2 رکعتیں فرضوں کے بعد، 2 رکعت مغرب کے بعد، 2 رکعت عشاء کے بعد اور 2 رکعت نماز فجر سے پہلے. ہمارے ہاں نماز کے اندر کافی شدت برتی جاتی ہے، ان کے ساتھ کچھ اور بھی چیزوں کو ملا کے فرض کے درجے پہ پیش کر دیا جاتا ہے اور یہ کہا جاتا ہے کہ اگر پڑھنی ہے تو پوری پڑھو. اور بعض لوگ صرف اس لیے عشاء کی نماز نہیں پڑھتے کہ وہ 17 رکعت ہے. تو یہ حکم اب ہمیں سمجھ آنا چاہیے اس چیپٹر کو پڑھتے ہوئے، فرض فرض ہے، سنت سنت. ایک وہ چیز ہے جس کے نہ کرنے سے دین پہ نقصان آتا ہے، دین کے اندر خلل آتا ہے. دوسری وہ چیز ہے کہ جس پہ عمل اگر نہیں کرتے کسی وجہ سے، ہاں دل میں یہ خیال ہے کہ کرنا چاہیے، انکار نہیں، نہ شکری نہیں، تو نہ کرنے کی صورت میں انسان گناہگار نہیں ہوتا. اور دوسری بات اس میں ہمیں پتہ چلتی ہے کہ یہ 12 رکعتیں ہی سنتیں ہیں، اس سے علاوہ کچھ اور سنتیں بھی لوگ سنت کے نام پہ پڑھتے ہیں تو وہ چیز اس کے درجے پہ نہیں آئے گی. دوسری بات ہم نے اس حصے میں سے سیکھی کہ ظہر سے پہلے 4 کی بجائے 2 رکعتیں بھی پڑھی جا سکتی. عموماً ہمارے ہاں 4 سنت 4 فرض پڑھے جاتے ہیں، لیکن اگر کبھی کسی موقع پہ مجبوری ہو، نہیں پڑھنا چاہتے یا نہیں پڑھ سکتے، تو صرف آپ 2 سنتیں بھی ادا کر سکتے ہیں. پھر اگلی چیز ہم نے ایک اور حدیث سے جو سیکھی وہ کیا تھی کہ 4 رکعت سنت کو بھی 2-2 کر کے ادا کیا جا سکتا ہے. دیکھیے کتنی آپشنس مل رہی ہیں آپ کو نماز کے اندر جو ہم عموماً نہیں جانتے. اگلی چیز ہم نے سیکھی کہ نفل یا سنتیں گھر میں پڑھنی چاہیے اور فرض مسجد میں پڑھنے چاہیے، اور یہی اللہ کے نبی کا عمل تھا. ایک اور چیز جو ہم نے سیکھی، غیر موقعدہ سنتیں یعنی جن کی تاکید نہیں ہے، کوئی کر لے تو ٹھیک ہے، اچھی بات ہے، وہ ہیں عصر کی نماز سے پہلے 4 سنتیں. اس سے تو کافی لوگ واقف ہوتے ہیں، لیکن ایک سنت جس کا ذکر کرنے والی ہوں وہ مجھے دیکھ میرے خیال میں کافی لوگ اس سے آگاہ نہیں ہوتے، اور وہ ہیں مغرب کی نماز سے پہلے کی 2 سنتیں. ہمارے کلچر میں اس کا رواج نہیں، اس لیے میں یہ حدیث پڑھ کے سنانا چاہوں گی. نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے 2 مرتبہ فرمایا، مغرب سے پہلے 2 رکعتیں ادا کرو. تیسری بار فرمایا، جس کا دل چاہے. یہ اس لیے فرمایا کہ کہیں لوگ اسے سنت مؤکدہ نہ بنا لیں. حضرت انس کہتے ہیں کہ مدینہ میں مؤذن مغرب کی اذان کہتا، ہم سب ستونوں کی طرف دوڑتے. کیوں؟ ستون کے پیچھے پڑھیں تاکہ وہ سترہ بن جائے، سترہ بنانے کے لیے. اور 2 رکعتیں پڑھتے، لوگ اس کثرت سے 2 رکعتیں پڑھتے کہ اجنبی یہ گمان کرتا کہ مغرب کی جماعت ہو چکی. یعنی بعد میں کوئی داخل ہوتا تو وہ لوگوں کو اس طرح پڑھتے دیکھ کے سمجھتا کہ فرض اب ہو گئے اور فرضوں کے بعد کی 2 سنتیں یہ لوگ پڑھ رہے ہیں. اسی طرح اس موضوع پہ ایک تیسری بات کیا ہے، مرثد بن عبداللہ عقبہ رضی اللہ عنہ کے پاس اور کہا، کیا یہ عجیب بات نہیں کہ ابو تمیم رضی اللہ عنہ مغرب کی نماز سے پہلے 2 رکعت پڑھتے ہیں. عقبہ نے کہا کہ ہم بھی رسول اللہ کے زمانے میں پڑھتے تھے. اس نے پوچھا، آپ کیوں نہیں پڑھتے؟ کہنے لگے کہ مصروفیت ہو گئی ہے. یہ روایت دیکھیے، اس کا نیچے حوالہ صحیح بخاری کی روایت ہے اور تہجد کے باب میں آئی ہے. اوپر جو پہلے 2 روایتیں بتائی، ایک بخاری ہی کی تھی ایک مسلم کی، کتنی معروف مطلب کتنی زیادہ سٹرونگ سند کی روایتیں ہیں، لیکن میرا خیال ہے کہ ہمارے کلچر میں کسی کو نہیں پتہ. آپ میں سے کس کو پہلے یہ بات پتہ تھی؟ ایک کو بھی نہیں پتا تھی. تو پھر فائدہ ہوا نا کتاب پڑھنے کا. جی کل بک سے پڑھ کے پتہ چلی. ہاں ہاں جی. تو اب دیکھیے اتنی چھوٹی، بلکہ یہاں تو یہ بہت اعلیٰ درجے کی سند کی روایتیں ہوتی ہیں نا، اس کے بارے میں یہ بھی آتا ہے کہ اس کا اجر اگر انسان کو پتہ چل جائے تو وہ کبھی نہ چھوڑے. اور اب آئیے ذرا اس کو رمضان کے ناطے سے دیکھیں، ہمارا یہ وقت کہاں جاتا ہے افطاری کھانے میں. और ये सुन्नत वही पूरी कर सकता है जो खजूर के बाद बस पानी का एक घूंट लेके खड़ा हो जाए, क्योंकि मगरिब से पहले वक्त इतना थोड़ा होता है, फौरन उसके बाद फ़र्ज़ पढ़ने होते हैं। मगरिब वो नमाज है कि जिससे पहले अमूमन अज़ान के बाद के जो 15 मिनट है वो भी नहीं दिए जाते, तो उस वक्त में, और इसको बहुत हल्का पढ़ेंगे, और ख़ैर से हम तो वैसे ही हल्का पढ़ते हैं, लेकिन यानी इसको बहुत लंबा नहीं पढ़ें कि फ़र्ज़ जमात चली जाए। ठीक है, अगली चीज़ जुमे के बारे में, इसमें भी बहुत अहम मसले आपके सामने आएंगे इंशाअल्लाह ताला, और सारी चीज़ें सुनते वक्त हमें अमल की नीयत से भी देखना है। पहली बात ये है जुमे की नमाज़ के बारे में जो हमने सीखी, और वो क्या है, जुमे की सुन्नतें हैं बेसिकली ये कि अगर कोई चाहे तो जुमे की नमाज़ के बाद 4 रकत अदा करे, और कोई चाहे तो 2 रकत भी पढ़ ले। अल्लाह के नबी जुमे की नमाज़ के बाद मस्जिद में कुछ ना पढ़ते, फिर घर आते और 2 रकतें पढ़ते। मस्जिद में 4 सुन्नतें दो दो करके पढ़े, घर में आए तो फिर 2 सुन्नतें पढ़े। अब ये सारी रिवायतों का खुलासा है। अमल क्या है, मस्जिद में गए, पहली वाली बात नहीं ये उसके बाद की है, पहले इसको कर लेते हैं। मस्जिद में 2 फ़र्ज़ पढ़े हमने इमाम साहब के साथ जुमे की नमाज़ के तौर पे, उसके बाद मस्जिद में ही पढ़ना चाहें 2 रकत 2 रकत करके 4 पढ़ लें, सिर्फ 2 पढ़ लें ठीक है, नहीं पढ़ते घर जाके 2 भी पढ़ लें, कोई कुछ नहीं पढ़ता, जुमे पे कोई फ़र्क नहीं। जुमे की नमाज़ 2 रकत है जस्ट, अब जुमा पढ़ लिया, अब जोहर से उसको नहीं मिला सकते, घर में पढ़ेंगे तो पूरी पढ़ेंगे, मस्जिद में जाएंगे तो 2 पढ़ेंगे। ये है बाद वाली सुन्नतें। मैं बात करूंगी पहले वाली सुन्नतों की। एक गलती जो हमारे यहाँ अमूमन देखी गई और वो जुमे के साथ होती है कि लोग जुमे की नमाज़ के लिए जब आते हैं मस्जिद में तो उसमें आते ही पहले नमाज शुरू करते हैं, बल्कि जुमे की कब आप आगे आ रहा है तो उसी में इंशाल्लाह फिर हम इसको देखेंगे, हालांकि ये सुन्नत तो ही का बाब है कि बस लोग यानी एक बहुत ही इज्तमाई किस्म की गलती जो है वो करते हैं कि जुमे की नमाज़ ए टू ज़ी क्या है, कब जाएं तो क्या करें और जाने के बाद से तक क्या चीज़ें होंगी, सिर्फ सुन्नतों पे भी फोकस करते हैं। अगली चीज़ हमने सीखी कि फजर की सुन्नतों 2 सुन्नतों की अहमियत इतनी ज़्यादा है कि अल्लाह के नबी को वो दुनिया और उसकी हर चीज़ से ज़्यादा प्यारी थी, और अल्लाह के नबी ये 2 सुन्नतें सफ़र में भी नहीं छोड़ते थे। फिर अगली बात है कि फजर की 2 सुन्नतों के बाद दाएं पहलू पे लेट जाना चाहिए, अल्लाह के नबी लेटते थे, और एक दुआ है अल्लाहुम्मा जाल फी कल्बी नूरा से लेके आगे तक मारूफ दुआ है, वो आप इस सूरत में भी पढ़ते थे। तरीका क्या होगा, फ़र्ज़ सुन्नत 2 पढ़ें फजर के बाद, 2 सुन्नत पढ़ें, फिर जाए नमाज पे इस तरह लेटें कि आपकी लेफ़्ट साइड ऊपर हो और राइट साइड नीचे हो, चंद मिनट 1-2 मिनट एक सस्ताने का अंदाज़ है। असल में तो ये एक रुख्सत भी थी उन लोगों के लिए जो तहज्जुद के लिए पहले से जागे होते हैं, लंबे लंबे क्याम कर चुके हैं, तो उनको फजर की फ़र्ज़ों के लिए तैयार किया जाता है। ठीक है, फिर इसके बाद अगली बात हमने सीखी कि अगर किसी वजह से फजर की सुन्नतें अदा ना कर सके और मस्जिद में जाए और जमात हो रही हो तो फिर नमाज सुन्नतें जो हैं वो बाद में भी अदा की जा सकती हैं, यानी आप उठे फजर का वक्त था, अब शुरू हो चुका था, अब इतना वक्त नहीं था कि आप सुन्नतें पढ़ें, और सुन्नतें पढ़ने में सूरज के निकलने का डर हो सकता है, तो फिर आप सुन्नतें बाद में भी पढ़ सकते हैं, इवन सूरज निकल जाए फिर उसके बाद दोबारा भी पढ़ सकते हैं, लेकिन इनको बहरहाल पढ़ना चाहिए। अगली बात हमने सीखी कि फ़र्ज़ नमाज शुरू हो जाए तो सुन्नतें अदा नहीं करेंगे, और अगर कोई सुन्नतें अदा कर रहा है और इमाम साहब तकबीर कह दें, जो ही तकबीर ख़त्म हुई अल्लाह अकबर से तकबीर तहरीमा कह के नमाज शुरू हुई, तो फिर पिछले शख्स के लिए सुन्नतें पढ़ना बिल्कुल जायज़ नहीं रहता। उस सूरत में जिस पोजीशन में सलाम फेर दें, रुकू के बाद, रुकू से पहले, सजदे में, और इंशाल्लाह अल्लाह ताला अजर देने वाला, अगर नफिल पढ़ रहे थे तो कोई ज़रूरत नहीं दोबारा दोहराने की, पढ़ना चाहे पढ़ें, सुन्नतें थी तो उसको बाद में 2 सुन्नतों को आप फिर दोबारा पढ़ लें। अगली चीज़ हमने इस हिस्से में सीखी कि नमाज़ों की कुल रकात क्या हैं, जो यानी मतलूब है फजर की नमाज़ 2 सुन्नतें और 2 फ़र्ज़, जोहर 4 सुन्नतें 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नतें, असर 4 फ़र्ज़, मगरिब 3 फ़र्ज़ और 2 सुन्नतें, ईशा 4 फ़र्ज़ और 2 सुन्नतें, इसके बाद एक वितर या 3 पढ़ लें। ये है वो नमाज जो मतलूब है, इसके अलावा जो भी रकतें नमाजों में है वो नफलों की सूरत में थी, जिसको फिर लोग बाज़ दफ़ा मतलब नमाज का एक लाजमी हिस्सा समझ के अदा करते हैं और बाज़ उसकी वजह से नमाज अदा नहीं कर पाते। तो ये जो सुन्नतें रखते हैं इसका एहसान है। इसमें भी जो फ़र्ज़ है ना वो सबसे पहले दर्जे पे है, सुन्नतें उससे बाद, और नफिल तो आपकी मर्ज़ी, आप जितने मर्ज़ी पढ़ें, आप किसी को मजबूर नहीं कर सकते कि वो नमाज़ फ़ौरन पढ़े। अगली बात हमने इसमें सीखी कि वितर चाहे तो नमाज ईशा के साथ ही पढ़ ले और चाहे तो रात के आखिरी हिस्से में तहज्जुद पढ़ने के बाद पढ़ ले। जी अब आप सवाल कीजिए, आप पीछे से।
ज्यादातर लोग जो हमारे पाकिस्तानी में जो है ना वो कहते हैं कि नमाज में जो है ना ये नफल और वो मुकदा सुनते तो है ना, जो आपने बताया फर्ज और मुकदा, गैर मुकदा सुनते जो है ना वो भी जो है ना ये कितनी तरी नमाज है कि ये लाजमी पढ़ी नहीं पढ़ी तो कोई नहीं नमाज हो सकती।
जी, ये इस बात की दलील क्या दी उन्होंने आपको?
कुछ भी नहीं,
हाँ
मैंने कहा
जी,
ये तो फर्ज है, नफल तो आप कर भी नहीं
देखिए
पाएंगे
सिंपल
पाकिस्तानी
बात
में।
है, अल्लाह के फ़र्ज़ किए हुए में और आपके नफिल में बराबरी कैसे हो गई? दूसरी बात, अभी हमने आप में से जिन लोगों ने सुनी रोज़े के मसाइल में बाब तत्वो, नफिल कहते ही तत्वो है, दिल की खुशी से आप मारे बांधे एक नमाज़ पढ़ रहे हैं और सिर्फ इस खौफ से पढ़ रहे हैं कि अगर मैंने ना पढ़ी तो मेरा मतलब नमाज ही नहीं होगी, तो वो नफलों की रूह भी ख़त्म हो गई। ये तो ऐसी है कि किसी को ज़बरदस्ती या मजबूर करें कि आप वो काम करें। तो बहरहाल आपको हुक्म समझ आ गया कि आप फ़र्ज़ पढ़ रहे हैं, सुन्नतें पढ़ें, पढ़नी चाहिए, अच्छी बात है, लेकिन नहीं पढ़ सकते तो शिद्दत नहीं। जी आप,
मेरे पुत्र के सुनते हैं खुदा जो है यार, इसको हम बोरो करके पढ़ सकते हैं,
मसलन
जैसे जोर की चार
हाँ जी, सोहर से पहले जो चार सुन्नत हैं उसको दो भी, खाली सिर्फ ओवन इवन दो भी पढ़ सकते हैं, क्योंकि अभी रिवायत हमने देखी कि आपने दो 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 भी खाली पढ़ी थी। ठीक है जी, एक ऑनलाइन से सवाल है, इफ़ वी ऑफर जुमा नमाज एट होम शुड वी हैड ऑफर 2 रकत और जोहर नमाज? नहीं, कोई औरत अगर घर में पढ़ रही है तो पूरी ही पढ़ेगी और मर्द को इजाज़त ही नहीं है घर में पढ़ने की, जबकि वो मतलब सेहतमंद है और कोई उज़र नहीं। एक क्वेश्चन ये है कि वी से जुमा नमाज 2 रकत, डू वी हैव टू से 2 सुन्नत और नफिल? मेरा लिए इसका जवाब मिल गया होगा। ठीक है जी, यानी सुन्नतें पढ़ लें तो उसके साथ हैं और नहीं पढ़ेंगे तो नहीं, लेकिन नमाज बहरहाल हो जाती है। ठीक है चलिए अगला चैप्टर देखते हैं, तहज्जुद, क्यामुल लैल, क्याम रमज़ान और वितर के मसाइल। इस बाब से हमने सीखा कि फ़र्ज़ नमाजों के बाद सबसे कीमती नमाज जो है वो तहज्जुद की नमाज है। अगली बात हमने सीखी कि तहज्जुद अल्लाह से कुर्ब, गुनाहों के मिटने और मज़ीद गुनाहों से बचने का सबब है। अगली बात हमने सीखी कि शौहर अगर तहज्जुद के लिए उठे तो बीवी को उठाए, बीवी उठे तो शौहर को उठाए, और अगर कोई ना उठे तो पानी के छींटे मारे, पहले से इजाज़त ले लें और अपना ताल्लुक़ अच्छा रखें, ये ना हो कि सुबह सुबह ही लड़ाई शुरू हो जाए। और आप देखिए इससे कितना प्यारा घराना बनता है ना, मिसाली घराना तसव्वुर में आता है, तो मुझे उठाओ मैं तुम्हें उठाती हूँ, एक ये घराना है और एक वो घराने है कि जहाँ आप किसी को गुनाह के लिए मजबूर करते हैं, तो फिर दोनों घरों में बरकतें तो एक जैसी नहीं होंगी ना। अगली चीज़ हमने सीखी कि जब इंसान रात को सोता है तो शैतान उसके सर की गुद्दी पर 3 गिरहें लगाता है और कहता है कि रात बड़ी लंबी है, यानी सोते रहो अभी बहुत वक्त है। जब भी इंसान तहज्जुद के लिए उठना चाहता है तो शैतान उसको तसल्ली देता है कि अभी तो बहुत वक्त है, देखो अगर अभी उठ गए फिर फजर तक पता नहीं फिर ही ना सो जाओ, और इसी तरह रात गुजरती है। लेकिन अगर इंसान अल्लाह का जिक्र करे एक गिरह खुल जाती है, वुजू करे तो दूसरी खुल गई, नमाज़ पढ़े तो तीसरी खुल गई, और सारा दिन इंसान का दिल खुश रहता है, उसका नफ्स पाक रहता है, और अदरवाइज़ उसका दिल बोझल रहता है, तबीयत सुस्त है, और उसकी सुबह यानी गंदगी वाली सुबह होती है। और इसको आप एक्सपीरियंस कर सकते हैं, जो फजर की नमाज़ वक्त पे नहीं पढ़ पाते उनके साथ फिर ऐसे ही होता है, असल में वो हम शैतान के पंजे पे होते हैं। अगली बात हमने सीखी कि हर रात अल्लाह ताला दुनिया के आसमान पर नज़ूल फरमाते हैं जब तिहाई रात रह जाती है, और पुकारते हैं कि है कोई जो मुझे पुकारे मैं उसकी दुआ कबूल करूं, कोई है जो मुझसे मांगे और मैं इसको दूं, कोई है जो मुझसे बख्शिश तलब करे और मैं इसको बख्श दूं। और सुन, उस वक़्त इन सारी ज़रूरतों के तालिब जो हैं वो कहाँ होते हैं, हर एक जानता है, उसी वक्त तो आँख लगती है, हैरत है ना, جس وقت شیطان نازل ہوتے ہیں مغرب سے عشاء کے اور اس کے وقت میں، اس وقت تو ہم پورے ایکسپوجر کے ساتھ باہر پھر رہے ہوتے ہیں، اپنے آپ کو سجاتے اور سنوارتے، اور جس وقت اللہ کی رحمتوں اور نوازشوں کا نزول ہونا ہوتا ہے تو اس وقت ہم چادریں تان کے سو جاتے ہیں، پھر ہمیں خیر کہاں سے ملے؟ اللہ تعالیٰ ہمارے معمولات کو بدل دے. اگلی بات ہم نے سیکھی کہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم اتنی کثرت سے یعنی اتنے لمبے قیام کرتے تھے کہ آپ کے پاؤں سوج جاتے تھے، اور آپ یہ سب اللہ کی نعمتوں کا شکر ادا کرنے کے لیے کرتے تھے. اگلی بات ہم نے سیکھی اور بڑی واقعی سیکھنے کی بات ہے کہ رات کو جب بستر سے کوئی تہجد کے لیے اٹھے تو کیا پڑھے؟ 10 بار اللہ اکبر، 10 بار الحمدللہ، 10 بار سبحان اللہ و بحمدہ، 10 بار سبحان الملک القدوس، 10 بار استغفر اللہ، 10 بار لا الہ الا اللہ، اور پھر اللہم، آپ بھی پڑھیں گے، اللہم اللہم اعوذ بک من ضیق الدنیا وضیق یوم القیامہ. اس کا مطلب کیا ہے کہ اللہ میں تیری پناہ میں آتا ہوں دنیا اور قیامت کے دن کی تنگیوں سے. 10 بار یہ دعا پڑے گا. پھر کیا کہے؟ اللہم اغفر لی واہدنی وارزقنی وعافنی. پھر اس کے بعد وضو کر کے تہجد پڑھی جائے گی. آپ میں سے کتنوں کو یہ پتا تھے یہ والے اذکار؟ تو آپ دیکھ سکتے ہیں کہ ماشاءاللہ آپ لوگ تو ان لوگوں میں سے ہیں میرے گمان کے مطابق کہ جو درس و وعظ اور تدریس اور علم کی محفلوں سے وابستہ ہیں، تو پھر دوسرے لوگوں کا حال کیا ہوگا؟ اسی سے ہم دیکھ سکتے ہیں کہ علم کا سفر انسان کے لیے معرفت کا سفر ہے. اور یہ کتنے چھوٹے کلمات ہیں. اور آپ کو پتہ ہے کہ جب ہم ایک دم بستر سے اٹھتے ہیں نا تو کھڑے ہونا، بعض لوگ، آپ کو پتہ ہے کہ ایک بیماری ہوتی ہے کہ جس میں لوگ لیٹ کے فوراً جب اٹھ جاتے ہیں نا تو فوراً گر جاتے ہیں، اور وجہ کہ آپ کا بلڈ بالکل یوں تھا نا، باڈی پوری میں یوں، اور آپ ایک دم کھڑے ہوں گے نا تو وہ جسم کے اندر ایک دم انتشار آتا ہے. پہلے لیٹے تھے نا، اب تھوڑی دیر بیٹھے. اب یہ ساری دعائیں پڑھنے میں 10-15 منٹ تو لگیں گے نا، تو اتنے میں جسم سکون میں آ جائے گا، پھر آپ اٹھیں گے. اگلی چیز ہم نے سیکھی اور وہ کیا تھی، اور یہ واقعی آپ یاد بھی کریں گے اس حصے میں، کیونکہ یہ دعا انسان کی ان دعاؤں کو قبول کرواتی ہے جو دن کی گھڑیوں میں اگر وہ نہ مانگ سکے یا اس کی دعائیں قبول نہیں ہو رہیں. دعا کیا ہے میں پوری روایت آپ کے ساتھ شیئر کروں گی. اللہ کے نبی نے فرمایا، جو شخص رات کو نیند سے جاگے اور کہے، آپ بھی کہیے، لا الہ الا اللہ وحدہ لا شریک لہ لہ الملک وله الحمد وهو على كل شيء قدير الحمد لله وسبحان الله والله أكبر ولا حول ولا قوة اللہ باللہ. ترجمہ کیا ہے؟ اللہ کے سوا کوئی سچا معبود نہیں ہے، وہ ایک ہے، اس کا کوئی شریک نہیں، اسی کے لیے ساری بادشاہی اور اسی کے لیے ساری تعریف ہے، اور وہ ہر چیز پر خوب قدرت رکھنے والا ہے. ساری تعریف اللہ کے لیے ہے. اللہ ہر عیب سے پاک ہے. اللہ سب سے بڑا ہے. بدی سے بچنے اور نیکی کرنے کی کوئی طاقت نہیں مگر اللہ کی توفیق سے. پھر کہے، اللہم اغفر لی، پڑھی، اللہم اغفر لی، اے اللہ مجھے بخش دے، یا کوئی اور دعا کرے تو قبول ہوگی، اور اگر وضو کر کے نماز پڑھے تو وہ بھی قبول کی جائے گی. کتنا آسان ہے اپنی دعاؤں کو قبول کروانا. اور اس میں اب دیکھیے آپ نے مانگا کیا ہے، صرف اللہ کی تعریف ہے، شکر، حمد، تسبیح، تکبیر. कितना अल्लाह ताला को प्यार आता होगा ना, एक बंदा रात को उठता है और वो दुआ मांगता है, और ये करवट बदलने की भी दुआ है। बहुत सब आप देखिए, इंसान को नींद नहीं आती या नींद आई और एकदम आँख खुल गई, उस वक्त भी अल्लाह ताला ने बता दिया ये दुआएं। कभी आपकी आँख खुले ना तो ये दुआ पढ़े उस वक्त। और इसका तरीका क्या है, यानी आपका जो बेडरूम है ना उसके अंदर आप कोई एक ऐसा सा चार्ट बना सकते हैं। मुझे एक मेरी स्टूडेंट थी बहुत अच्छी, तो उन्होंने बना के दिया हुआ है, अभी तक लगा हुआ है। यानी उसमें रात के सोने की जितनी भी चीज़ें हैं, आमन रसूल जो सोने के वक्त की दुआ है, फिर उसमें ये दुआ ख़ास तौर पर उसने लिखी हुई है, और इतनी बड़ी ये लिखा हुआ कि अगर कभी आँख खुले और याद नहीं है तो आप नाइट लैम्प चलाएं तो आप देख के पढ़ सकते हैं, और ये याद भी हो जाती है, कोई मुश्किल नहीं है। और उस वक्त पढ़ने का जो मज़ा है, ऐसे लगता है कि जैसे वाकई अल्लाह ताला आपके घर की छत के ऊपर है, और इतना कुर्ब महसूस होता है। अल्लाह अकबर। फिर अगली चीज़ हमने सीखी कि तहज्जुद के लिए जब अल्लाह के नबी उठते तो बिस्तर पर बैठ के आसमान की तरफ देखकर सूरह आले इमरान की आखिरी आयत, आयत 190 से 200 तक पढ़ते, इन फी खल्क़ समावाती वल अर्ध से लेकर लअल्लकुम तुफ्लिहून तक। ये आयतें क्या हैं, इसको आप देखेंगे इंशाल्लाह रमज़ान के इंट्रोडक्टरी प्रोग्राम में। इस दफ़ा हमारी जो सूरत, यानी हमारे दौरे कुरान का जो थीम है ना, वो ये है ही ये कि इन्ना फ़ी खल्क़ समावाती वल अर्दी वख्तिलाफिल लैली वन नहार। और इंशाल्लाह आप ख़ुद ही देखेंगे, यानी आप लोगों के लिए एक डिस्कवरी होगी कि कुरान पाक का वो हिस्सा जो हमारी नज़रों से बिल्कुल गाफिल है या उतरा हुआ है, उसमें हमारे लिए क्या पैगाम है। तो आपके और मेरे अमल की बात फ़िलहाल क्या है कि हम उठते ही, यानी जब बैठेंगे, तो फिर इनको आयतों को पढ़ सकते हैं। अगली बात हमने इस हिस्से में सीखी, और वो क्या है कि तहज्जुद के लिए जब नबी सल्लम उठते तो तकबीर तहरीमा के बाद, यानी सुबह अल्लाह अकबर के बाद जब करते हैं ना नमाज शुरू करते हुए, अल्लाह अकबर दुआ पढ़ी आप मेरे साथ, बड़ी खूबसूरत है, और ये दुआ हिस्नुल मुस्लिम बुक में आपको तहज्जुद की दुआ के नाम से मिलेगी। अल्लाहुम्मा लकल हम्दु अंता قيم السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد لك ملك السماوات والأرض ومن فيهن ولك الحمد أنت نور السماوات والأرض ولك الحمد أنت ملك السماوات والأرض ولك الحمد أنت الحق ووعدك الحق ولقاؤك الحق وقولك الحق والجنة حق والنار حق والنبيون حق मिलाएंगे तो फिर हक कौन पढ़ सकते हैं आप। व मुहम्मद हक व साअत हक اللهم لك أسلمت وبك آمنت وعليك توكلت وإليك أنبت وبك خاصمت وإليك حاكمت فاغفر لي ما قدمت وما أخرت وما أسررت وما أعلنت أنت المقدم وأنت المؤخر لا إله إلا أنت। तर्जमा है, इलाही तेरे ही लिए सारी तारीफ़ है, ज़मीनो आसमान और जो कुछ इनमें है, तू ही सबको कायम रखने वाला है। तेरे ही लिए सारी तारीफ़ है, ज़मीनो आसमान और जो कुछ इनमें है, इन सब की बादशाही तेरे लिए है, तेरे ही लिए सब तारीफ़ है। तू ही रोशन करने वाला ज़मीनों आसमान को, तेरे ही लिए सारी तारीफ है। तू ही बादशाह है ज़मीनों आसमान का, तेरे ही लिए सारी तारीफ है। तू हक है और दुनिया आखरत के मुतल्लिक तेरा वादा हक है। आखरत में तेरी मुलाकात हक है, तेरा कलाम हक है, जन्नत हक है, जहन्नम हक है, तमाम अम्बिया हक है और मोहम्मद सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम हक है। क़यामत हक है। इलाही मैं तेरे सामने झुक गया, मैं सिर्फ तेरे साथ ईमान लाया, मैंने सिर्फ तुझी पर भरोसा किया, मैंने सिर्फ तेरी तरफ रुजू किया। सिर्फ तेरी ही मदद से दुश्मनों से झगड़ता हूँ, मैंने सिर्फ तुझे ही अपना हाकिम माना। सो तू मेरे अगले पिछले और जाहिर और पोशीदा, और जिन्हें तू मुझसे ज़्यादा जानता है, सारे के सारे गुनाह माफ़ कर दे। तू ही आगे करने वाला और पीछे डालने वाला है, तेरे सिवा कोई सच्चा माबूद नहीं। एक एक लफ्ज़ के अंदर बंदगी और अबूदियत का दर्स है, और अल्लाह ताला के सामने झुकने का। इस दुआ को भी आप अगर अपने बुक में से देख के तहज्जुद के वक्त पढ़ना शुरू कर दें तो इंशाल्लाह जल्द ही आपको याद हो जाएगी। जी बिल्कुल पढ़ सकते हैं, इवन नमाज के दौरान भी पढ़ सकते हैं, देख के बिल्कुल पढ़ सकते हैं अल्लाह के हुक्म से। अगली बात हमने जो सीखी वो क्या थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम बाज़ औक़ात सिर्फ़ एक आयत की तकरार में पूरी तहज्जुद की नमाज गुजार देते थे, क्योंकि एक मौके पे आपने एक आयत पढ़ी, इन तुअज़्ज़िबहुम फ़इन्नहुम इबादुक व इन तग़फ़िर लहुम फ़इन्नक अंतल अज़ीज़ुल हकीम, कि अगर तू इनको अज़ाब दे तो ये तेरे बंदे हैं, और अगर तू इनको माफ़ कर दे तो तू यकीनन गालिब और हिकमत वाला है। तो लिहाजा अगर कभी आपका दिल किसी एक आयत पर ठुका, अपने दिल से, अल्लाह के नबी तो उम्मत की मोहब्बत में ये मांग रहे थे, तो आपको किसी को तड़प लगी हुई है, किसी का दिल रोया हुआ है, किसी को शौहर से कोई चोट पड़ी, बच्चों की चोट पड़ी, एक ही दुआ मांग रहे हैं, एक ही आयत पढ़ रहे हैं, कोई हर्ज नहीं। देखिए नफलों के मामले में इस्लाम का दायरा कार बहुत वसी है, फ़र्ज़ इबादत अपनी जगह, लेकिन अगर आपका अपने रब से ताल्लुक़ है वो जो भी करें, लेकिन किसी को बताने की नहीं, उसको आप कानून नहीं बना सकते, उसको मसला नहीं बना सकते। वैसे मुझे किसी की बात याद आ गई कि स्टूडेंट थी क्लास की, तो बच्ची की डिलीवरी का वक्त था, तो लेकिन अल्लाह ताला ने उनको आखिरी वक्त तक क्लास से जोड़े रखा। इत्तेफाक क्या हुआ कि उसी दिन हमने क्लास में वो आयत पढ़ी कि अल्लाह ताला के बारे में कि फ़ैन नमा अरादा हो, सूरह बकरा की है कि फ़ैन नमा अमरुहु इज़ा अरादा शैयअन यक़ूल लहू कुन फ़यकून। ये तो सूरह यासिन की आयत है, इसी से मिलती जुलती थी, जिसमें अल्लाह ताला के साहिब कुन फ़यकून का हुक्म था। अब चूंकि वो ताज़ी ताज़ी तफसीर सुन के गई हुई थी कि अल्लाह ताला जो चाहे वो कर सकता है, और वो तो सिर्फ कुन कहता है तो वो काम हो जाता है, उसके बाद वहाँ से वो हॉस्पिटल गई। अब बच्ची की कंडीशन बड़ी क्रिटिक थी और ज़ाहिर है कि डॉक्टर्स भी डरा रहे थे वटेवर, तो कहती है कि मैं बाहर बैठी हुई थी और मुसलसल मेरी ज़ुबान पे यही आई थी, सुन के गई थी ना, उनको उसका मतलब पता था। और कहती हैं कि फिर मुझे पता है कि मेरा ईमान है कि मेरी बस इस आयत की वजह से फिर नामुमकिन चीज़ अल्लाह ने मुमकिन करा दी ना। अब ये उनका फेल था। आप कहें क्यों, कोई दलील है, कोई सनद है? नहीं भाई, अल्लाह के बंदो जो आप सोचते हैं वो आपके जहन में रहता, यही तो जिंदा ताल्लुक है इस किताब से। हाँ मसला क्या बिगड़े, अब वो एक किताब लिखें और उसमें लिखें इस आयत को आप किसी भी हाजत के लिए पढ़ें, इतनी दफ़ा पढ़ें इतना सवाब, ये गलत। आप अपने अमल को किसी के ऊपर लागू नहीं कर सकते, इस तरह हर बंदे का अमल है। आपको क्या पता है मुझे कुरान की कौन सी आयत पसंद है, आपको कौन सा पता है कि मैं अपने रब से बात करती हूँ तो मैं कौन सी आयत पढ़ती हूँ, इसी तरह मुझे आपका नहीं पता। अल्लाह के साथ ताल्लुक बड़ा प्यारा होना चाहिए, लेकिन उसको किसी के सामने एक कानून या एक मजबूरी नहीं बनाना चाहिए, क्योंकि आप किसी चीज़ को कानून बनाते हैं और वो जाली हो तो आपकी पकड़ हो जाती है। अगली चीज़ हमने इसमें सीखी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने एक रात तहज्जुद की नमाज में 4 रकतों में 7.25 सुपारे पढ़े। कैसे पढ़े थे? सबसे पहले सूरह फातिहा पढ़ी, फिर बकरा पढ़ी, फिर रुकू किया इतना लंबा जितना क़याम था, फिर रुकू से सर उठाया इतना लंबा कौमा जितना के रुकू था, फिर सजदा किया कौमे की जितना लंबा, फिर दोनों सजदों के दरमियान दुआ मांगी सजदे की तरह, फिर सजदे के बाद जलसे में भी देर लगाई यानी 2 रकतों के बाद बैठ गए, फिर इत्मीनान किया, फिर आपने 4 रकतों में सूरह बकरा, सूरह आले इमरान, सूरह निसा और माईदा पढ़ी। हम कितने महीनों में पढ़ते हैं ये 7 पारे, अल्लाह अकबर। फिर अगली बात हमने इसमें सीखी और वो क्या है कि अल्लाह के नबी ने एक मौके पे नफली नमाज में सूरह बकरा पढ़ी आपके साथ एक सहाबी थे, सोचा कि मैंने सोचा कि जब 100 आयतें हो जाएंगी तो आप रुकू में जाएंगे। पीछे वाला गिन रहा होता है ना कब रुकू में जाएंगे इमाम साहब। हाँ, जैसे इस वक्त आप सोच रहे हैं कि कब ख़त्म होगी क्लास। अच्छा, अब ये हदीस दोबारा सुनिए क्योंकि इसमें आपको एक बहुत अहम बात पता चलने वाली है। सूरह बकरा शुरू की, सहाबी कह रहे हैं कि मुझे लगा कि आप 100 रकते बढ़ के रुकू में जाएंगे, लेकिन आप पढ़ते ही चले गए। मैंने सोचा सूरह बकरा को 2 रकतों में तकसीम करेंगे, लेकिन यानी आधी सूरत पढ़ के आप रुकू में जाएंगे, लेकिन आपने पूरी सूरह बकरा पढ़ ली। आप सोचा होगा आप जाएंगे, कहा नहीं, आपने सूरह निसा शुरू कर दी, फिर उसे ख़त्म किया, फिर क्या पढ़ा, सूरह आल इमरान पढ़ी, वो ख़त्म की, और इसी तरह पढ़ते जा रहे थे। जहाँ सुबहान अल्लाह का हुक्म होता तो सुबहान अल्लाह कहते, कुछ मांगने का जिक्र होता तो सवाल करते, पनाह मांगने का जिक्र होता तो औज़ु बिल्लाह कहते। सूरह आल इमरान ख़त्म करके आपने रुकू किया। इसमें जो बाकी बातें पता चली सो चली, इसमें एक अहम बात क्या पता चली कि तरतीब लाजिम नहीं है। सूरह बकरा के आल इमरान आती है ना, नहीं आपने सूरह निसा पढ़ी, फिर सूरह आल इमरान पढ़ी। तो बाज़ लोग जो ये कहते हैं कि तरतीब लाजमी है, तो उसके लिए एक बड़ी खूबसूरत दलील है। अच्छा, ये तो आपका अपना अमल था ना, लेकिन दूसरों का आप क्या कहते थे कि सारी रात, एक अगला मसला लिखिए इससे जो हमें मालूम हुआ कि सारी रात नफिल पढ़ना और हमेशा दिन में रोज़ा रखना, ये इसकी इजाज़त नहीं है। कुछ हिस्सा क्याम, कुछ हिस्सा नींद। अगली बात सीखी कि 3 दिन से कम में कुरान पाक ख़त्म करना पसंद नहीं फरमाते थे आप। 1 माह में कहा ना करो, इससे कम, कम करते करते कम अज़ कम फिर ये है 7 दिन में, और 3 दिन में फिर आखिर इजाज़त दी आपने। और आपने कहा कि जिसने 3 दिन से कम में कुरान पढ़ा उसने हक अदा नहीं किया, उसने यानी हक नहीं दिया। अब बताइए, जो लोग एक ही मौके पे कई की सपारे पढ़ के कई की कुरान ख़त्म करते हैं तो हक तो अदा नहीं होता ना। एक और बात बड़ी खूबसूरत है और इसको हम अपने अमल के लिए ज़रूर नोट करेंगे, वो क्या कि जो रात के नवाफिल में 200 आयात की तिलावत करता है वो इताअत गुजार मुखलिस लोगों में शामिल होता है। 200 आयतें, चाहे पिछली सूरतें याद कर लें, आखिरी आयतें तो बहुत छोटी छोटी हैं ना, 2-3 सूरतों में इंशाल्लाह हो जाएंगी। फिर अगली बात सीखी कि अल्लाह के नबी सारी रात नफिल नहीं पढ़ते थे। फिर अगली बात हमने सीखी अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की 3 दुआओं के नाते से, और वो क्या कि एक मौके पे आप सारी रात बेदार हुए, नाफिल पढ़ते रहे यहाँ तक कि सुबह हुई, फिर जब आपने नमाज से सलाम फेरा तो सहाबी हबाब बिन अरद कहते हैं अल्लाह के नबी आप पर मेरे माँ बाप कुर्बान, जिस तरह आपने नवाफिल पढ़े इससे पहले मैंने कभी आपको इस तरह नमाज अदा करते नहीं देखा। यानी आपका ये आपकी आदत नहीं थी, इससे अनयूजुअल हुआ। आपने फरमाया तुमने दुरुस्त कहा, नमाज ऐसी इबादत है जिसमें अल्लाह के साथ शौक बढ़ जाता है और इसके अजाब से पनाह मांगी जाती है। चुनाचे मैंने अल्लाह ताला से 3 सवाल किए जिनमें से 2 कबूल हुए। एक सवाल कि मेरी उम्मत को पिछली उम्मतों की तरह तबाहों बर्बाद न करे, इसको अल्लाह ने कबूल फरमाया। दूसरा सवाल मेरी सारी उम्मत पर बयक वक्त दुश्मनों को गलबा हासिल ना हो, ये भी कबूल कर लिया गया। फिर मैंने सवाल किया कि उम्मत मोहम्मदिया में इख्तलाफ रूनमा ना हो, लेकिन इसे कबूल नहीं किया गया। इम्तिहान था ना उम्मत का। फिर अगली बात हमने देखी कि नफिल नमाजों में कभी आप सिर्री आवाज़ यानी छुपा के आहिस्ता, और कभी बुलंद यानी जहरी आवाज़ से किरत फरमाते थे, और आपकी नमाज की किरत की आवाज़ घर में दूसरों को भी थोड़ी सुनाई देती थी। अगली बात हमने सीखी कि नफिल नमाजों में ना तो बहुत चीख के और ना बहुत आहिस्ता, बल्कि दरमियानी आवाज़ से किरत करनी चाहिए, और दिलचस्प रिवायतें आप पढ़ लीजिएगा बाद में। अगली बात हमने सीखी कि रमज़ान होता या गैर रमज़ान, अल्लाह के नबी 11 रकत से ज़ायद नमाज नहीं पढ़ते थे रात को। हाँ, उनकी खूबी और उनकी तूल इसका ना पूछो, यानी बहुत लंबी लंबी रकतें करते थे। हमारे असल में गिनने का रिवाज है, क्वालिटी नहीं क्वांटिटी, यानी क्वालिटी नहीं क्वांटिटी कॉन्शियस है, कितने नफिल पढ़े, कितने सपारे पढ़े, उसमें से लिया कितना, ये कम बात होती है, लेकिन उन्हीं को आप लंबा कर लेते थे। उसके बाद अल्लाह के नबी का क़ियामुल्लैल का तरीका हमने देखा, वितर पढ़ने का तरीका देखा, हर 2 रकतों पर सलाम फेरते और 1 रकत आखिर में वितर करते, और इसी तरह हमने 11 तक पढ़े। फिर आखिरी एक और बात हमने सीखी कि वितर आखरात के आखिरी हिस्से में भी पढ़ा जा सकता है, और ये भी सीखा कि जब रात को कोई नफिल पढ़ना शुरू करे तो पहले 2 हल्की रकतें अदा करे, और यानी आखिर में फिर उससे वितर बना के तो नमाज पूरी की जा सकती है। फिर अगली बात हमने सीखी कि वितर 1 रकत 1 सलाम में भी 3 वितर हो सकते हैं और दो सलाम के साथ भी तीन वितर हो सकते हैं, और दोनों ही का तरीका जो है वो अल्हम्दुलिल्लाह हम पढ़ चुके। अगली बात हमने सीखी कि आप कभी 7, 9 और 11 तक वितर पढ़ते थे ये रकतें। इसी तरह क़ियामुल्लैल 7 रकत से 13 रकत तक भी आपने अदा की, जिसमें 5, 3 और 1 वितर होता था, बाकी नफिल जो होते थे। फिर अगली चीज़ हमने सीखी कि वितर की तीसरी रकत में तशहुद के लिए नहीं बैठना, बल्कि आखिरी रकत में ही बैठना। यानी आप 5 भी इकट्ठी पढ़ रहे हैं ना, तो बस बीच में बैठेंगे नहीं, खड़े होते जाएंगे और आखिर में फिर अत्तहियात पढ़ के उठेंगे। अगली बात हमने वितर के नाते से सीखी कि अल्लाह के नबी पहली रकत में सब्बी हिस्मा रब्बी कल आला, और दूसरी में कुल या अय्युहल काफिरून, तीसरी कुल हुवल्लाहु अहद पढ़ते थे। फिर अगली बड़ी अहम बात है कि एक रात में 2 दफ़ा वितर नहीं पढ़ने चाहिए। बस लोग रात को पढ़ के सो जाते हैं क्योंकि उनको शक होता है कि हमारी सुबह आँख नहीं खुलेगी, फिर सुबह उठ के अब क्या करें, नफिल पढ़िए जितने मर्जी पढ़ें। देखिए वितर का ताल्लुक ना तो ईशा की नमाज से ना फजर से, ये एक अलग इबादत है। पहले कर चुके कोई बात नहीं, बाद में नफिल पढ़ लें, पहले छोड़ देते हैं कि आखिर में पढ़ेंगे, कोई हर्ज नहीं, दोनों तरीके ठीक है। अगली बात, नमाज वितर में मगरिब की नमाज की मुशाबहत नहीं होनी चाहिए, यानी तीसरी दूसरी रकत में बैठने वाली कैफियत। अगली बात बड़ी खूबसूरत है कि अगर कोई आखिरी रात में ना उठ सके तो शुरू में पढ़ ले, और जो आखिर में उठे तो वो पढ़े आखिर में, और ये अफजल है। आपने पूरी रात कभी शुरू, कभी आखिर, कभी बीच में, हर वक्त में पढ़ी। फिर अगली बात हमने इसमें जो सीखी वो क्या थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कभी भी पूरी रात में कुरान नहीं पढ़ा, और पूरी रात नमाज नहीं पढ़ी, और रमज़ान के अलावा कभी पूरा महीना रोज़े से नहीं रहे। फिर इसमें एक तवील रिवायत है, आप इसको ख़ुद पढ़ लीजिएगा, कि जिसमें अल्लाह के नबी के वितर पढ़ने के मुख्तलिफ तरीक़े को बताया गया। अगली चीज़ हमने सीखी कि वितर पढ़ने के बाद सलाम फेर कर अल्लाह के नबी 3 बार ये कहते थे, क्या? सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, पढ़िए सुबहानल मलिकिल कुद्दूस, सुबहानल मलिकिल कुद्दूस। अगली बात हमने सीखी कि जो वितर ना पढ़ सके या पढ़ना भूल जाए तो जब याद आए तब वितर पढ़ ले। अगली बात सीखी कि अगर कोई रात का वजीफ़ा या मामूल की चीज़ छूट जाए तो नमाज़े फजर से जोहर के बीच के वक्त में अदा कर ले तो उसको रात ही के वक्त में अदा करने का सवाब मिलता है। सुभान अल्लाह, आप नहीं पढ़ सके तहज्जुद सुबह उठ के पढ़ लें, कोई बात नहीं, इसी तरह आदत हो जाएगी इंशाल्लाह वक्त पे पढ़ने की। अगली बात हमने सीखी कि जो नफिल इबादत करे तो फिर उसको छोड़ना नहीं चाहिए। अगली चीज़ हमने सीखी दुआए कुनूत की, इसको देख लेते हैं, ये मसला थोड़ा सा देखने के काबिल है। और वो क्या कि अल्लाह के नबी 3 वितर पढ़ते और दुआए कुनूत रुकू से पहले पढ़ते थे, ठीक है। अगली रिवायत क्या है कि दुआए कुनूत वितर रुकू से पहले पढ़ते थे। अब यहाँ मसला है कि वितर के बाज़ लोग रुकू के बाद पढ़ते हैं, तो ये लिखते हैं कि वितर में रुकू के बाद कुनूत की तमाम रिवायात ज़ईफ़ हैं, और जो रिवायात सही हैं इनमें सराहत नहीं, यानी वजाहत नहीं, कि अल्लाह के नबी का रुकू के बाद वाला कुनूत कुनूते वितर था या नासला। कुनूते नासला क्या होता है कि कभी किसी क्लेमिटी या कोई डिज़ास्टर, कोई मुश्किलों मुसलमानों पे कोई आफत आ जाती है तो उस मौके पे पढ़ा जाता है। तो लिहाजा सही तरीका यह है कि वितर में कुनूत रुकू से कबल किया जाए। ये भी मेरा ख्याल है कि कुछ लोगों के लिए एक नई चीज़ होगी। अमूमन लोग वितर की दुआ कुनूत जो है वो रुकू के बाद पढ़ते हैं, तो पहले पढ़ने की कोशिश करें। हमारे सामने दलील है, फिर जब दलील आ गई तो मान लिया, और हमारा मज़हब ही दलील का है। अपने लिए हमेशा एक जहन में रखिए, जिसकी दलील मिल गई मान लूँगी, क्योंकि हमारा यकीन और हम इसी एतमाद पर इस बुक को पढ़ रहे हैं कि इंशाल्लाह इसमें सही रिवायात है। तो इसमें बहुत सारी चीज़ें जो पीछे से हम कर रहे होते हैं, अगर उसको हम अपनी ज़िंदगी में नहीं कर पाते, और यानी करते थे आज छोड़ देंगे, तो हिजरत का भी तो सवाब मिलेगा ना, अल्लाह ताला ने हमारे लिए रखा है। बाद जब आप एक अमल को सही या अच्छा अमल कर समझ के कर रहे होते हैं, बाद में आपको उसके मुखालिफ आता है चीज़, तो बदल लीजिए, क्या फ़र्क पड़ता है। असल बात तो ये कि हमने जो अपने, जिसको कहना चाहिए रीसेंट, अपने फौरी वक्त के मुताबिक जिस चीज़ को सही समझा उसको कर लिया, कल हो सकता है आपके सामने कोई और रिवायत आ जाए, उसकी सनद स्ट्रांग होगी तो उसको हम मान लेंगे। इंशाल्लाह ताला। जो दुआए कनूत है ना, वो रुकू से उठने के बाद पढ़नी है। पढ़ते हैं ना लोग अमूमन, रुकू में जाने से पहले पढ़नी चाहिए। बस ये सीखे इसमें, दुआए कनूत पढ़ते हैं ना, लमाहदिनी फीमन हदईत, या जो दूसरी लोग पढ़ते हैं, तो उसमें से रुकू में जाने से पहले पढ़ेंगे। कुछ लोग बाद में पढ़ते हैं। फिर अगली बात हमने सीखी कि नफिल नमाज उस वक्त तक पढ़नी चाहिए जब तक दिल की रग़बत हो, थक जाएं तो आराम करना चाहिए। आपको पता, अल्लाह के नबी की बीवी ज़ैनब जो थी, उन्होंने अपनी चुटिया को रस्सी के साथ बांधा हुआ था, तो आपने कहा ये क्या? कहा अल्लाह के नबी, सुन, पढ़ते पढ़ते रात को अगर ऊँग आ जाएगी तो बाल खींचेंगे, तोड़ जाऊँगी। तो फिर उस पर आपने कहा था कि खोल दो, और अल्लाह ताला यानी बंदे को सवाब देते हुए नहीं थकता, यानी जितना सही तरह कर सको करो, और नींद आ जाए तो सो जाओ। जितनी ताकत हो कि अल्लाह सवाब देने से नहीं थकता, तुम अमल करने से थक जाओगे। फिर वितर के यानी दुआए कुनूत के अल्फाज हैं, हमने ये पहले दूसरी बुक में पढ़े थे गालिबन ना, तो चलिए कह लेते हैं एक दफ़ा यहाँ भी। जो वितर की दुआ नबी सल्लम से हमें मिलती है वो क्या है? अल्लाहुम्मा दीनी
अल्लाहुम्मा
फी मन हदीता व आफिनी फी मन आफ़ईता व तवल्लनी फी मन तवल्लैता व बारिक ली फी मा आतैता वकिनी शर्र मा कदैता इन्नका तकदी वला युक्दा अलैक व इन्नहु ला यज़िल्लु मम वालैत वला यइज़्ज़ु मन आदैत तबारकता रब्बना व तआलैत। एक एक लफ्ज़ खूबसूरत है। ए अल्लाह, मुझे हिदायत देकर इन लोगों के गिरोह में शामिल फरमा जिन्हें तूने रुश्दो हिदायत से नवाजा है, और मुझे आफियत देकर इन लोगों में शामिल फरमा जिन्हें तूने आफियत बख्शी है, और जिन लोगों को तूने अपना दोस्त बनाया है, इनमें मुझे भी शामिल करके अपना दोस्त बना ले, और जो कुछ तूने मुझे अता फरमाया इसमें मेरे लिए बरकत डाल दे, और जिस शर और बुराई का तूने फैसला फरमाया है इससे मुझे महफूज रखना, तो इससे मुझे महफूज रख और बचा ले। यकीनन तू ही फैसला सादिर फरमाता है, मेरे तेरे खिलाफ फैसला सादिर नहीं किया जा सकता, और जिसका तू वली बना वो कभी जलीलो ख्वार और रुस्वा नहीं हो सकता, और वो शख्स इज्जत नहीं पा सकता जिसे तू दुश्मन कहे। हमारे परवरदिगार आका, तू बड़ा ही बरकत वाला और बुलंदो वाला है। अब ये तो दुआ थी ना। तरीका देखिए कि दुआए कनूते वितर में हाथ उठाने के बारे में कोई मरफू रिवायत नहीं है, अलबत्त मुसन्नफ़ इब्ने अबी शैबा में बास आसार मिलते हैं। इसलिए हाथ उठाकर या हाथ उठाए बगैर दोनों तरीकों से कनूते वितर की दुआ पढ़ना दुरुस्त है। ठीक है, दोनों तरह से पढ़ सकते हैं। फिर रब्बना व तआलैक के बाद नस्तग़फिरुका व नतूबु इलैक के लफ्ज़ जो ये अल्लाह के नबी से साबित नहीं है, तो इसको पढ़ने से अवॉइड कीजिए, क्योंकि आप आगे दलील पढ़ रहे हैं कि छींक आने पे अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कहा, तो ये सुनकर इब्ने उमर कहने लगे कि मैं भी अल्हम्दुलिल्लाह वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाह कह सकता हूँ, मगर रसूलिल्लाह ने इस मौके पर हमें ये तालीम नहीं दी, बल्कि ये फरमाया कि छींक आने पर अल्हम्दुलिल्लाह अला कुल्ली हाल पढ़ा जाए। तो इससे हमें सहाबा कराम की इख्तियात का पता चलता है कि अपनी मर्दी से किसी चीज़ में इजाफा नहीं करते थे, तो दुआओं में ज्यादती नहीं करनी चाहिए। अगली चीज़ हमने इसमें सीखी कनूत नाजला। नाजला नाजला से है, यानी जब मुसलमानों पे कोई मुश्किल आती है तो उस वक्त में एक दुआ अल्लाह के नबी पढ़ते थे। आप भी पढ़ें, और दुनिया में जहाँ मुसलमानों पे जुल्म होता है, आप तर्जमे से देखेंगे कि कितनी खूबसूरत दुआ है। अल्लाहुम्मा अग्फिर लना वलिल मुमिनीना वल मुमिनाती वल मुस्लिमीना वल मुस्लिमाती व अल्लफा नो व अल्लिफ बैन कुलूबिहिम व असलिह ज़ात बैनिहिम वंसुरहुम अला अदुविक व अदुविहिम अल्लाहुम्मल अन कफरत अल्लाहुम्मल अन कफरत अहलिल किताबिल्लज़ीना यसुद्दूना अन सबीलिका व युकज़िबूना रुसुलका व युकातिलूना أولياءك اللهم خالف بين كلمتهم وزلزل أقدامهم وأنزل بهم بأسك الذي لا ترده عن القوم المجرمين. तर्जमा क्या है? ए अल्लाह, हमें और तमाम मोमिन मर्दों, मोमिन औरतों, मुसलमान मर्दों और मुसलमान औरतों को बख्श दे और इनके दिलों में उल्फत डाल दे, इनकी बाहमी इसलाह फरमा दे, अपने और इनके दुश्मनों पर इनकी मदद फरमा। इलाही, काफिरों को अपनी रहमत से दूर कर जो तेरी राह से रोकते, तेरे रसूलों को छुटलाते और तेरे दुश्मनों से लड़ते हैं। इलाही, इनके दरमियान फूट डाल दे, इनके कदम डगम मगा दे और इन पर अपना वो अजाब उतार जिसे तू मुजरिम कौम से नहीं टाला करता। तो लिहाजा अगर किसी दुश्मन पे बददुआ करते, जैसे एक मौके पे एक कबीले के लोग थे, धोखे से उन्होंने कुछ सहाबा इकराम को बुलवाया कि इनको भेजें ताकि हमें दीन सिखाएं। आपने 70 हाफिज़े कुरान यानी जो एक आलिम थे उनको भेजा, लेकिन उन्होंने उन सबको कत्ल कर दिया। अब इतना बड़ा नुकसान, जब पहले ही थोड़े थे और उसमें भी 70 और इल्म वाले चले गए, तो अल्लाह के नबी को इतनी तकलीफ़ हुई कि फिर आप कई दिन तक, तकरीबन एक महीना तक उस कौम के लिए कनूत नाजला पढ़ते रहे। तो इससे पता चलता है कि कुछ चीज़ें सी आराम से जब ठीक नहीं होती तो फिर अल्लाह की मदद बुलवाई जा सकती है उनके लिए। तरीका क्या होता था? कोई भी नमाज़ जो फ़र्ज़ नमाज़ें होती थी उसकी आखिरी रकत में रुकू के बाद समय अल्लाहु लिमन हमीदा हो रब्बना वलकल हम्द के बाद फिर ये दुआ पढ़ते थे। आज भी मस्जिदों में मैंने ऐसा देखा है, ख़ास तौर पे फजर की नमाज़ के बाद जो आखिरी रकत होती है ना, दूसरी रकत का जो रुकू है उससे उठ के ये दुआ मांगी जाती है। और आपने 500 नमाज़ों में एक महीने तक ये दुआ पढ़ी थी और सहाबा किराम आमीन कहते थे। बहरहाल, क़याम रमज़ान के बारे में हमने देखा कि इसका क़याम इंसान के अजर का सबब है। अगली चीज़ इस हिस्से से हमने सीखी कि 3 रात तक आपने क़याम किया और फ़र्ज़ नहीं किया हर रात को जागना। हज़रत उमर ने बाजमात क़याम रमज़ान दोबारा शुरू कराया, मगर ये भी फरमाया कि रात का आखिरी हिस्सा जिसमें लोग सो जाते हैं वो पहले हिस्से से बेहतर है। फिर अगली चीज़ हमने सीखी कि अल्लाह के नबी रमज़ान में तहज्जुद नहीं पढ़ते थे। और हैरत होती है मुझे उन लोगों से जो कहते हैं रमज़ान आया वह आजकल हम तहज्जुद भी पढ़ रहे हैं। हालांकि तहज्जुद तरावी का दूसरा नाम है, रमज़ान में नहीं पढ़ी। आप सोच रहे होंगे फिर क्या करें, सहरी में उठ रहे हैं कुरान पढ़ लें, जिक्र अस्कार करें। अब आपको इतने जिक्र तो पता चल गए रात के पढ़ने के, दुआएं मांग लें, इस्तखारे के पढ़ें, कुछ भी पढ़ें, तौबा के पढ़ लें, तहज्जुद की नियत से नहीं पढ़ेंगे। फिर अगली चीज़ हमने इसमें सीखी और वो क्या है कि अल्लाह के नबी की जो रात का क़याम था वो 11 रकत से ज़ायद नहीं होता था। फिर अगली चीज़ हमने इस हिस्से से सीखी और वो क्या है कि हज़रत उमर ने भी मदीना के कारियों को 11 रकत पढ़ने का हुक्म दिया था। अगली बात सीखी कि हज़रत उमर, हज़रत अली, उबई बिन काब और अब्दुल्ला बिन मसूद रदी अल्लाह अन्हुम अजमईन से 20 रकत वाली क़ियामुल लैल की तमाम रिवायात सनदन ज़ईफ़ है। और अगली और आखिरी बात जो इस चैप्टर से हमने सीखी वो क्या थी कि अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने सहरी खाई, फिर फजर के लिए खड़े हुए और सहरी से फारिग होने और नमाज में दाखिल होने का वक्त इतना था जितनी देर में कोई कुरान करीम की 50 या 60 आयतें पढ़ लेता था, यानी 50 to 60 आयतें थी। तो यहाँ पे अल्हम्दुलिल्लाह ये बाब है, पूरा बाब देखिए कितनी ज़्यादा मसाइल हमें इसमें पता चले ना। और नवाफिल में ही अमूमन हमसे कमी बेशी होती है। कोई सवाल जो इनको सुनते हुए आपके जहन में आए आप कर सकते हैं, इधर या ऑनलाइन कोई भी सकते हैं आप। जी जी हाँ जी, कज़ा नमाज केड़ी? अब ऑनलाइन वाले भी मेरी पंजाबी सुनेंगे हैं। ਤੁਸੀਂ ਮਾਫੀ ਮੰਗੋ ਅੱਲਾਹ ਕੋਲੋਂ, ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ। ਨਹੀਂ ਜੀ, ਉਹਦੇ 'ਚ ਹੈ ਕਿ ਜਿਹੜੀਆਂ ਨਮਾਜ਼ਾਂ ਪਿਛਲੇ ਤੁਸੀਂ ਛੱਡਦੇ ਸੋ ਪੜ੍ਹਦੇ, ਹੁਣ ਤੁਸੀਂ ਪੜ੍ਹਨੀ ਸ਼ੁਰੂ ਕਰ ਦਿੱਤੀ ਹੈ ਨਾ, ਤਾਂ ਅੱਲਾਹ ਤਾਲਾ ਮਾਫ ਕਰ ਦੇਗਾ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਤਾਲਾ। ਅੱਲਾਹ ਦੇ ਨਬੀ ਨੇ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੀਆਂ ਦੁਬਾਰਾ, ਠੀਕ ਹੈ। ਅੱਛਾ, ਅਸੀਂ ਕਿਉਂ ਨਹੀਂ ਰੁਖਸਤ ਲੈਂਦੇ ਨਾ, ਇਸ ਅਸੀਂ ਇਸ ਮਸਲੇ 'ਤੇ ਗੱਲ ਕਰ ਚੁੱਕੇ ਹਾਂ, ਅਤੇ ਤੁਸੀਂ ਸ਼ਾਇਦ ਮੇਰਾ ਅੱਜ ਕੱਲ੍ਹ ਜੀ ਆਉਣਾ ਸ਼ੁਰੂ। ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਆਪ ਜ਼ਰੂਰ ਇਨਕੀ ਨਾ ਸੈਟਿਸਫੈਕਸ਼ਨ ਬਾਅਦ ਮੇਂ ਕਰੇ ਇਸ ਪੇ ਨਾ, ਤੋ ਹਮ ਕਰ ਲੇ ਅਗਲਾ ਚੈਪਟਰ ਵੀ। ਹਾਂ ਤੋ ਫਿਰ ਐਸੇ ਕਿ ਆਪ ਆਪ ਪੇ ਹੈ, ਮੈਂ ਤੋ ਰੈਡੀ ਹੂੰ, ਬੈਠੀ ਹੂੰ ਪੜ੍ਹਾਨੇ ਕੇ ਲੀਏ। ਤੋ ਅਗਰ ਆਪ ਚਾਹ ਔਰ ਅਗਲੇ ਸਭ ਚੈਪਟਰ ਵਹੀ ਹੈ ਜੋ ਇੱਕ ਖਾਸ ਵਕਤ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ੇ ਹੈ ਨਾ, ਨਮਾਜ਼ ਈਦ ਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਔਰ ਕਸਰ ਕੀ ਨਮਾਜ਼, ਇਹ ਕਸਰ ਕਾ ਟੋਪਿਕ ਅਹਿਮ ਹੈ ਕਿਉਂਕਿ ਹਮਾਰੇ ਯੇ ਸਵਾਲ ਹੋਤੇ ਹੈ ਅਕਸਰ, ਤੋ ਇਸਕੋ ਦੇਖ ਲੇਤੇ ਹੈਂ ਜੀ। ਅਗਲੇ ਚੈਪਟਰ ਕੋ ਦੇਖੇਂਗੇ ਨਮਾਜ਼ ਕਸਰ। ਇਸਮੇ ਸੇ ਹਮਨੇ ਕਿਆ ਸੀਖਾ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਮੇਂ ਜਬ ਕੋਈ ਜਾਏ ਤੋ ਨਮਾਜ਼ ਕੋ ਕਮ ਕੀਆ ਜਾ ਸਕਤਾ ਹੈ। ਜ਼ੋਹਰ ਕੀ ਦੋ ਰਕਤ ਹੈ, ਫਜਰ ਉਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਰਹੇਗੀ ਜੈਸੇ ਹੋਤੀ ਹੈ, ਅਸਰ ਵੀ ਦੋ ਰਕਤ। ਦੂਸਰੀ ਚੀਜ਼, ਸਫ਼ਰ ਕਾ ਤਾਲੁਕ ਜੋ ਹੈ ਵੋ ਸ਼ਹਿਰ ਕੀ ਹੱਦ ਕੇ ਖਤਮ ਹੋਣੇ ਸੇ ਹੈ, ਕੋਈ ਸ਼ਹਿਰ ਜਲਦੀ ਖਤਮ ਹੋਤਾ ਹੈ, ਕੋਈ ਦੇਰ ਸੇ ਖਤਮ ਹੋ ਜਾਤਾ ਹੈ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਹੈ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਕੀ ਹਾਲਤ ਮੇਂ ਖੌਫ ਹੋ ਜਾਂ ਨਾ ਹੋ, ਦੋਨੋਂ ਮੇਂ ਕਸਰ ਹੋਗੀ। ਫਿਰ ਅਗਲੀ ਬਾਤ ਇਹ ਹੈ ਕਿ ਕਸਰ ਕੇ ਲੀਏ ਕਮ ਸੇ ਕਮ ਜੋ ਮੁੱਦਤ ਹੈ ਵੋ 3 ਦਿਨ ਕੀ ਹੈ, ਸ਼ੱਕ ਕੀ ਹਾਲਤ ਮੇਂ 6 ਮਾਹ ਤੱਕ ਵੀ ਉਸਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਵੀ ਪੜ੍ਹੀ ਜਾ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਹੱਤਾ ਕਿ 10 ਸਾਲ ਕੋਈ ਕਹੀਂ ਰਹੇ ਔਰ ਉਸਕੋ ਸ਼ੱਕ ਹੈ ਕਿ ਮੈਂ ਕਿਸੀ ਵਕਤ ਵੀ ਚਲਾ ਜਾਊਂਗਾ, ਤੋ ਵੀ ਕਸਰ ਹੈ। ਯਾਨੀ ਇੱਕ ਮਿਸਾਲ ਦੀ ਗਈ। ਅਬ ਯੇ ਸਾਰੀ ਰਿਵਾਇਤਾਂ, ਕਹੀਂ 19 ਦਿਨ ਕਾ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਕਹੀਂ 15 ਕਾ ਮਿਲਤਾ ਹੈ, ਕਹੀਂ 3 ਕਾ, ਔਰ ਅਮੂਮਨ ਲੋਕ ਇਸ ਪੇ ਕਨਫਿਊਜ਼ਨ ਕਾ ਸ਼ਿਕਾਰ ਹੋਤੇ ਹੈ, ਤੋ ਜੋ ਸਭਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਔਥੈਂਟਿਕ ਚੀਜ਼ ਮਿਲਤੀ ਹੈ ਵੋ 3 ਦਿਨ ਕੀ ਮਿਲਤੀ ਹੈ, ਕਿਉਂਕਿ ਦੇਖੇ ਜੋ 15 ਦਿਨ ਕਹਤੇ ਹੈ ਉਸਮੇਂ ਵੀ 3 ਤੋ ਡਨ ਹੈ ਨਾ, ਜੋ 19 ਕਹਤੇ ਹੈ ਉਸਮੇਂ ਵੀ 3 ਡਨ ਹੈ। ਤੋ ਆਪ ਸਾਰੀ ਰਿਵਾਇਤੋਂ ਕੋ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ, ਤੋ ਆਪਕੋ ਖੁਦ ਹੀ ਜ਼ਹਿਨ ਮੇਂ ਆ ਜਾਏਗਾ ਕਿ ਇਨਸਾਨ 3 ਦਿਨ ਤੱਕ ਅਗਰ ਉਸਕੀ ਨੀਅਤ ਕਰਕੇ ਜਾਤਾ ਹੈ, ਘਰ ਸੇ ਨਿਕਲੇ ਆਪਕੋ ਤਾਂ ਕਿਸੀ ਇੱਕ ਸ਼ਹਿਰ ਮੇਂ ਅਬ 3 ਦਿਨ ਜਾਂ ਉਸਸੇ ਜ਼ਿਆਦਾ ਰਹੇਂਗੇ, ਤੋ ਫਿਰ ਆਪ ਕਸਰ ਨਹੀਂ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ। ਹਾਂ ਆਪ ਗਏ ਔਰ ਆਪ ਗਏ ਗਏ ਤੇ 2 ਦਿਨ ਕੇ ਲੀਏ, ਰੋ ਆਜ ਜਾਤੇ ਹੈਂ ਆਜ ਜਾਤੇ ਹੈਂ, ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਟਿਕਟ ਨਹੀਂ ਮਿਲ ਰਹੀ, ਵੀਜ਼ੇ ਕਾ ਮਸਲਾ ਹੈ, ਕੁਛ ਹੋਤੇ 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 ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਵੀ ਲੱਗ ਗਿਆ, ਤੋ ਇਨਸ਼ਾਅੱਲਾ ਕਸਰ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ। ਤੋ ਕਸਰ ਕਾ ਤਾਲੁਕ ਬੇਸਿਕਲੀ ਅਨਸਰਟਨਿਟੀ ਸੇ ਹੈ, ਗੈਰ ਯਕੀਨੀ ਸੂਰਤ ਹਾਲ ਜੀ। ਦੇਖੀਏ ਕਿਸੀ ਏਕ ਮੁਕਾਮ ਪੇ 3 ਦਿਨ ਹੈ, ਮਿਸਾਲ ਦੇਤੀ ਹੂੰ, ਆਪ ਯਹਾਂ ਸੇ ਪਾਕਿਸਤਾਨ ਜਾਤੇ ਹੈ, ਏਕ ਮਹੀਨੇ ਕੇ ਲੀਏ ਗਏ, ਏਕ ਸੂਰਤ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਯਹਾਂ ਸੇ ਸੀਧਾ ਲਾਹੌਰ ਗਏ ਔਰ ਵਹੀਂ ਸੇ ਆ ਗਏ, ਤੋ ਫਿਰ ਤੋ ਆਪਕੀ ਪਹਿਲੇ ਦਿਨ ਸੇ ਪੂਰੀ ਨਮਾਜ਼ ਹੋਗੀ, ਲੇਕਿਨ ਆਪ ਚੁੱਕੇ ਥੋੜ੍ਹੇ ਦਿਨ ਕੇ ਲੀਏ ਗਏ, ਆਪ ਸਭ ਰਿਸ਼ਤੇਦਾਰੋਂ ਕੋ ਮਿਲ ਰਹੇ ਹੈਂ, 3 ਦਿਨ ਆਪ ਲਾਹੌਰ ਰਹੇ, ਫਿਰ ਆਪ ਵਹਾਂ ਸੇ ਉੱਠੇ, ਤੋ 3 ਦਿਨ ਆਪ ਫੈਸਲਾਬਾਦ ਚਲੇ ਗਏ, 2 ਦਿਨ ਬਾਅਦ ਆਪ ਵਹਾਂ ਸੇ ਸਰਗੋਦਾ ਚਲੇ ਗਏ, ਵਹਾਂ ਸੇ ਉੱਠੇ ਤੋ ਮੁਲਤਾਨ ਚਲੇ ਗਏ, ਤੋ ਜਹਾਂ ਵੀ ਆਪ 3 ਸੇ ਕਮ ਦਿਨ ਰਹੇ ਵਹਾਂ ਆਪਕੀ ਨਮਾਜ਼ ਕਸਰ। ਆ ਪੂਰਾ ਮਹੀਨਾ ਆਪ ਸਫ਼ਰ ਮੇਂ ਤੋ ਆਪ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਤੇ ਰਹੇਂਗੇ ਨਾ, ਇਹ ਜੋ ਅੱਲਾਹ ਕੇ ਨਬੀ ਕੇ 19 ਦਿਨ ਕੇ ਪੜ੍ਹਨੇ ਕੀ ਰਿਵਾਇਤ ਹੈ ਵੋ ਯਹੀ ਹੈ ਕਿ ਆਪ ਮੁਖਤਲਿਫ ਜਗ੍ਹਾ ਜਾਤੇ ਰਹੇ ਥੇ ਨਾ, ਤੋ ਆਜ ਵੀ ਯਹੀ ਹੁਕਮ ਹੈ ਕਿ ਜਹਾਂ ਵੀ ਹਮ ਰਹੇਂਗੇ ਕਮ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ। ਫਿਰ ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮੀਨਾ ਮੇਂ ਵੀ ਕਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹਾਈ ਥੀ, ਹਜ ਕੇ ਦੌਰਾਨ ਜੋ ਮੀਨਾ ਕੇ ਦਿਨ ਹੈ ਉਸਮੇਂ ਵੀ ਕਸਰ ਪੜ੍ਹੇਂਗੇ। ਔਰ ਦੂਸਰੀ ਬਾਤ ਹਮਨੇ ਸੀਖੀ ਕਿ ਕਸਰ ਨਮਾਜ਼ ਅੱਲਾਹ ਕਾ ਤੋਹਫਾ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਕਬੂਲ ਕਰਨਾ ਚਾਹੀਏ। ਬਸ ਲੋਕ ਕਹਤੇ ਹੈ ਕਿ ਆਜ ਕੱਲ੍ਹ ਚੂੰਕੇ ਇਤਨੇ ਪੁਰਸਕੂਨ ਸਫ਼ਰ ਹੈ, ਕਿਆ ਮੁਸ਼ਕਿਲ ਹੈ, ਨਹੀਂ ਲੋਜਿਕ ਨਹੀਂ ਹੈ, ਜਬ ਹੁਕਮ ਹੈ ਤੋ ਉਸਕੋ ਆਜ ਕਸਰ ਪੜ੍ਹਨਾ ਜ਼ਿਆਦਾ ਅਜਰ ਕਾ ਜ਼ਰੀਆ ਬਣੇਗਾ, ਨਾ ਕਿ ਪੂਰੀ ਪੜ੍ਹਨਾ। ਫਿਰ ਸਫ਼ਰ ਮੇਂ ਕੋਈ ਨਮਾਜ਼ ਪੜ੍ਹੇਗਾ ਤੋ ਕੈਸੇ ਪੜ੍ਹੇਗਾ, ਏਕ ਅਜ਼ਾਨ ਔਰ 2 ਇਕਾਮਤ ਸੇ। ਜ਼ੋਹਰ ਪੜ੍ਹ ਰਹੇ ਤੋ ਬਸ ਏਕ ਦਫ਼ਾ ਅਜ਼ਾਨ ਦੀ ਜਾਏਗੀ ਔਰ ਜ਼ੋਹਰ ਔਰ ਅਸਰ ਦੋਨੋਂ ਕੇ ਲਈ ਅਲੱਗ ਸੇ ਇਕਾਮਤ ਕਹੀ ਜਾਏਗੀ। ਅਗਲੀ ਚੀਜ਼ ਇਹ ਕਿ ਸਫ਼ਰ ਮੇਂ 2 ਨਮਾਜ਼ੇ ਵੀ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕੀ ਜਾ ਸਕਤੀ ਹੈ, ਇਹ ਬਹੁਤ ਅਹਿਮ ਹੈ, ਇਸਕੋ ਸਮਝ ਲੇਤੇ ਹੈਂ। ਏਕ ਜਮ੍ਹਾਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਜ਼ੋਹਰ ਕੇ ਵਕਤ ਪੇ ਹੀ ਅਸਰ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ ਔਰ ਮਗਰਿਬ ਕੇ ਵਕਤ ਪੇ ਇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ, ਇਸਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾ ਤਕਦੀਮ, ਕਦਮ ਕਹਤੇ ਹੈ ਆਗੇ ਕੋ, ਯਾਨੀ ਵਕਤ ਸੇ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹ ਲੈਣਾ। ਦੂਸਰੀ ਇਹ ਕਿ ਆਪ ਸਫ਼ਰ ਐਸਾ ਤਾਂ ਆਪ ਅਭੀ ਔਰ ਚੱਲ ਰਹੇ ਥੇ, ਆਪਣੇ ਕਹਾ ਇੱਕ ਹੀ ਦਫ਼ਾ ਰੁਕੇਂਗੇ, ਵਟ ਐਵਰ, ਜ਼ੋਹਰ ਕਾ ਕੁਛ ਵਕਤ ਗੁਜ਼ਰ ਗਿਆ, ਅਸਰ ਕੇ ਕਰੀਬ ਪਹੁੰਚੇ, ਜ਼ੋਹਰ ਪਹਿਲੇ ਪੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਅਸਰ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਸੀ ਤਰ੍ਹਾਂ ਮਗਰਿਬ ਪੇ ਨਹੀਂ ਰੁਕੇ, ਚਲਤੇ ਗਏ ਚਲਤੇ ਗਏ, ਇਸ਼ਾ ਕਾ ਵਕਤ ਆ ਗਿਆ, ਪਹਿਲੇ ਮਗਰਿਬ ਪੜ੍ਹੀ ਫਿਰ ਇਸ਼ਾ ਪੜ੍ਹੀ, ਇਸਕੋ ਕਹਤੇ ਹੈ ਜਮ੍ਹਾ ਤਾਖੀਰ, वक्त से पहले पढ़ना या वक्त के बाद पढ़ना, ये दोनों ही चीज़ें जो हैं वो जायज़ हैं। इस्लाम में इसकी रुख्सत दी गई और इससे बहुत सारी सहूलतें मिल गई ना। आप कहीं नहीं पढ़ पा रहे थे तो वेट कर लें, और कहीं आप पढ़ सके तो अच्छा अगली भी पढ़ लें। जहाज़ कहीं रुका, स्टॉप ओवर हुआ, आप उस जगह पे दोनों अगली नमाज़ें भी पढ़ लें। लेकिन आम हालात में घर में रहते हुए इसकी इजाज़त नहीं। बाज़ ख़वातीन कहती हैं हमने बाज़ार जाना है तो हम जोहर के साथ असर पढ़ लें, तो वो फिर खेल ही होगा। जी आप पूछें। जी इन इनका सवाल ये है कि आजकल चूंकि इशा की नमाज़ यहाँ लेट होती है और बच्चों ने स्कूल जाना होता है, मगरिब के साथ इशा पढ़ लें, और चूंकि इशा पे, ये सवाल मुझे कई शहरों में किया गया पीछे भी, तो इसकी इजाज़त नहीं है। यही तो अल्लाह सिखाता है, इसी का नाम इताअत है। हम वैसे भी तो जागते हैं ना, आप मामूलात कर लें ऐसे कि आप कुछ ऐसा वक्त बीच में आराम कर चुके हैं और फिर बीच में पढ़ें, लेकिन पहले नहीं पढ़ सकते। और आजकल यहाँ मैंने देखा 11:15 पे हो जाता है वक्त, मगरिब जो है आपके पास तकरीबन 10 समथिंग पे होती है। किसी बच्चों को तो और सिखाना है ना, नहीं पढ़ सकते। मैंने कल परसों फिर इस मसले की रिसर्च की तो इस तरह नहीं पढ़ सकते, ठीक है। फिर इसके बाद अगली चीज़ हमने इसमें सीखी और वो क्या है कि सफ़र में सुन्नतें माफ़ हैं, ठीक है। सिर्फ फजर की 2 सुन्नतें पढ़ी जाएंगी, दैट्स इट। वितर नहीं छोड़ेंगे सफ़र में और फजर की सुन्नतें नहीं छोड़ेंगे, ठीक है। फिर कुछ वक्त ऐसे होते हैं कि जिसमें खजर यानी घर के आलम में भी 2 नमाज़ें जमा की जा सकती हैं। मसलन बारिश, तेज़ बारिश है कि घर से निकलना मुश्किल है दोबारा, तो मस्जिद में फिर दोनों नमाज़ें इकट्ठी पढ़ाई जा सकती हैं, इसकी भी रुख्सत मौजूद है। सफ़र किसको कहते हैं, ये भी एक बड़ा अहम सवाल है। बाज़ लोग ये कहते हैं कि भाई शहर छोटा है बड़ा है कैसे है। जैसे मिसाल, अब यहाँ के हिसाब से मैं आपको मिसाल दूँ कि आप लोग यहाँ बैठे हैं इस वक्त स्टोवनर में, यहाँ से आप जाते हैं ग्रोनलैंड, फिर उधर से जाते हैं आप, अलग अलग जगह है ना, तो क्या हुक्म होगा। इसके लिए एक बहुत बहुत सिंपल सा कानून, सिंपल सा असूल याद रख लें कि जिस जगह एक इलाके से जाते हुए दूसरे इलाके तक बीच में थोड़ा सा वीराना आए, जो एक फीलिंग आती है ना, ये शहर नहीं, अब हम खेतों से गुजर रहे हैं, जंगल आ गया है या सहरा आ गया है, एक इलाके से दूसरे तक गुजरते गुजरते बीच में अगर वीराना आ जाए तो फिर वो एक अलग शहर कहलाएगा। वरना आपको पता है दुनिया में ऐसे इतने, बल्कि हम जहाँ रहते हैं सड़क एक तरफ एक नाम है तो दूसरी तरफ दूसरा नाम है। अब जैसे मेरीलैंड एक स्टेट है, अगर आप अमेरिका में देखें तो उसमें हर 15 मिनट आधे आधे घंटे पे डिफरेंट, बिल्कुल शहर ही डिफरेंट है। कहीं आपको वाशिंगटन डीसी मिल जाता है तो कहीं आपको जर्मन टाउन मिल जाता है, तो फिर पूरी पड़ी जाएगी, ठीक है। कसर का ताल्लुक जो है वो इस चीज़ से है कि जिसमें आप अपने फील करते हैं कि मैं बाहर हूँ। आपका मूल शहर छोटा भी हो सकता है बड़ा भी हो सकता है। ह्यूस्टन जैसा शहर है, हम साउथ से नॉर्थ जाते हैं तो हमें 1.25 घंटा तकरीबन लगता है, तो हम वहाँ जाके कसर नहीं पड़ेंगे ना। लेकिन कुछ मुल्क शहर ऐसे हैं, एक शहर छोटा सा ख़त्म हुआ, आप ट्रैवलिंग में देखते हैं कोई बीच में छोटा सा शहर आता है, 2-4 मिनट वहाँ आबादी रहती है फिर ख़त्म हो गया, तो फिर उस सूरत में इंशाल्लाह ताला हम मतलब कसर कर सकते हैं। जी कोई और सवाल, कसर के टॉपिक सारे पूरे हो गए। बस लोग एक और मुगालता देते हैं, देखें आजकल तो कोई मुश्किल ही नहीं है, कोचिस के सफ़र हैं, गाड़ियों के, तो जो भी हो ये अल्लाह का तोहफा है। फिर बात कहते हैं ले आजकल तो मेहमान जो है वो ज़्यादा फारिग होते हैं, घर वाला ज़्यादा बिजी होता है, तो घर वाला कसर पढ़ ले, तो फिर जो मर्ज़ी कर लें कोई, लेकिन हुक्म यही है ना। फिर आप देखिए एक और चीज़ यहाँ इसमें ज़हन रखिएगा, ज़हन में सफ़र शुरू करने से पहले ही देख लें आपकी कोई नमाज़ तो नहीं जाने वाली। हमारे मुसलमानों की हालत कब बदलेगी, जब हमारे औकात नमाज़ों के साथ चलेंगे। शादियों पे लिखे बाद अज़ निकाह फुला, वलीमा कब हो रहा है, मगरिब के बाद, रुखसती कब है, ईशा के बाद, अच्छा भाई कोई यानी दावत रखी है फजर से बाद, जहर, इस तरह के मामूलात बनाए। हम कुछ भी करते हैं तो हर काम करने का घड़ी में देख लें कि सफ़र के लिए निकल रहे हैं तो हम नमाज़ कैसे रुकेंगे। तो बाज़ लोग ये सवाल करते हैं हम क्या करें कहाँ करें, इस तरह की बातें, ठीक है। तो ठीक है फिर यहाँ रुक जाते हैं, काफ़ी है ना। एक और याद आ गया मसला, माशाल्लाह मैन मेड जो मसला हमारी शरीयत में, कि जी मैके में जाके कसर नहीं होती। बाज़ कहते हैं जहाँ अपना घर हो वहाँ नहीं होती, ये सब बातें हैं। फिर एक सवाल है कुछ लोगों की, जॉब इधर होती है, रहते कहीं और है। अब वो क्या करें, वो हफ्ते में 3 दिन इधर है, 2 दिन उधर है, तो वो दोनों उनका घर है। जहाँ आपका घर है ना, वो सफ़र नहीं है। सफ़र क्या है कि जहाँ जाके आपको वो जगह अजनबी लगे, तो इंशाल्लाह इस सूरत में नहीं। बस आप जैसे कुछ लोग शिप्स पे काम करते हैं, मुसलसल ट्रैवलिंग में रहते हैं, तो वो शिप उनका घर है, तो वो पे बुरी पड़ेंगे। और कोई बात? चले, अल्लाह ताला हमारे लिए आसानी करे। सुबहान रब्बी का रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफून, व सलामुन अलल मुरसलीन, व अलहम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।